नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पक्ष विपक्ष की कड़ी संख्या 6। दोस्तों, 31 की शाम सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई कि सितंबर महीने के 18 से 22 तारीख तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। घोषणा करते हुए सरकार की तरफ से इस विशेष सत्र को बुलाने का कारण नहीं बताया गया। इस खबर के साथ ही मीडिया और राजनीतिक हलकों में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि संसद के इस स्पेशल सत्र को बुलाने के पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि हाल में ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में संविधान के बाद संसद ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र कुछ प्रक्रियाओं, परंपराओं और नियम कानून से चलने वाली शासन प्रणाली है। भले ही सत्ता पर कोई व्यक्तिवादी व्यक्ति ही क्यों न बैठा हो, उसे इन नियम कानूनों और परंपराओं को मानना ही पड़ता है, जब तक कि इन्हें बदल न दिया जाए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत की संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि अधिकतम 6 महीने तक ही हो सकती है। इस अवधि के बीच सरकार को संसद का सत्र बुलाना ही पड़ता है। नियम से इतर भारत की संसद साल में 3 बार बैठती है। इसकी शुरुआत होती है संसद के बजट सत्र से, यानी कि मूलतः फरवरी से अप्रैल के बीच, जो कि आयोजित होता है। दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है, जो जुलाई और अगस्त के महीने में होता है। तीसरा और अंतिम सत्र होता है साल के अंत में, जिसे शीतकालीन सत्र के तौर पर जाना जाता है। संसद सचिवालय द्वारा सदस्यों को भेजे गए मैसेज से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस स्पेशल सत्र में संसद की अहम प्रक्रियाओं में शामिल जीरो आवर, क्वेश्चन आवर और निजी सदस्यों से संबंधित कोई काम नहीं होगा। संसदीय परंपरा में जीरो आवर, क्वेश्चन आवर का बड़ा महत्व है। यही वो सत्र है जब विपक्ष सरकार से सवाल जवाब करता है और सरकार की जवाबदेही तय की जाती है। हालिया इतिहास में नज़र डालने का ऐसा कोई मौका नहीं है जब इस तरह से और आपात परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए संसद का सत्र बुलाया गया हो। 2 दिन से चल रहे कयासों के दौर को 3 तारीख को तब जाकर बंद हुआ जब संसद सचिवालय की तरफ से विशेष सत्र में होने वाले कामकाज को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गजट जारी होने के बाद से साफ हो गया कि सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के मसले पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री लगातार इस मसले को उठाते रहे हैं। इसकी वकालत उन्होंने संसद से लेकर पार्टी की रैलियों तक में की है। इसके पक्ष में उनका कहना है कि इससे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा और लोक लुभावन राजनीति पर भी रोक लगेगी। जो दल हर समय चुनाव के मोड में होते हैं और जनता को लोक लुभावन बातें करते हैं, उस पर रोक लगेगी। प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मसले को बहुत क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर प्रस्तुत किया है। उनके भाषणों को देखने पर लगता है कि यह भारत में पहली बार हो रहा है, जबकि वास्तविकता इसके उलट कुछ और ही कहानी कहती है। 1952 में हुए आम चुनाव से लेकर 1967 तक केंद्र में आम चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन उसके बाद शुरू हुई दल बदल की राजनीति और उसमें बढ़ते पैसे के प्रभाव के चलते ये सिलसिला टूटता चला गया। अब हाल ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकारें भी 5 साल के लिए निर्धारित अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगी कि नहीं, इसमें भी संशय बना रहता है। ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि एक बार एक साथ चुनाव कराने के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू कर दिया जाए, तो क्या गारंटी है कि राजनीतिक उठापटक और हर हाल में सत्ता में बने रहने की भूख वाले राजनीतिक दल सरकार गिराने और बनाने का खेल फिर से शुरू नहीं करेंगे। साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जबकि कई राज्यों में अभी हाल में ही चुनाव हुए हैं। इन सबको एक साथ मिलाकर दोबारा से सरकारें गिराकर एक साथ चुनाव कराने का फैसला कितना सही है? एक राष्ट्र एक चुनाव के फैसले पर आगे बढ़ने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। इसके लिए 2/3 राज्यों की सहमति, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराने की जैसी प्रक्रिया भी है, जिसे गुजरकर ही यह विचार मुकम्मल होगा। यह मसला व्यापक चर्चा का विषय है, लेकिन सरकार के पास क्या इतना वक्त है जिसमें इस तरह की चर्चा कराई जा सके, जबकि आम चुनाव में कुछ महीनों का ही वक्त बचा हुआ है। राज्यों में चल रही विपक्षी सरकारें इस पर सहमत होंगी जो हाल फिलहाल में चुनकर आई हैं या फिर जिनका आधे या उससे ज़्यादा का कार्यकाल बचा हुआ है। इस विचार को आगे बढ़ाने से पहले सरकार ने विपक्षी दलों से बात करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी। एक राष्ट्र एक विचार को आगे बढ़ाने से पहले इसके लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया। समिति काम करती इससे पहले ही इसमें दरार सामने आ गई, जब कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और समिति में विपक्षी दल के सदन में नेता के शामिल किए गए अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया। समिति में शामिल होने से इनकार करते हुए अधीर रंजन ने कारण दिया कि इसमें राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता को भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को आगे बढ़ाने के लिए इतनी उतावली है कि उसने पूर्व राष्ट्रपति को भी समिति प्रमुख बना दिया, जो कि पूर्व राष्ट्र प्रमुख के पद और प्रतिष्ठा पर कुठारा घात है। सरकार द्वारा बुलाए गए संसद सत्र और एक विधेयक को पेश करने के लिए तय की गई प्रक्रियाओं का उल्लंघन और पूर्व राष्ट्रपति और संसद की गरिमा के खिलाफ किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार मनमर्जी से काम कर रही है, जो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सरकार की तरफ से बुलाया गया संसद का विशेष सत्र नियम प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनुरूप है? सरकार जिस विधेयक को पेश कर रही है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर विचार विमर्श भी न किया जा सके? पूर्व राष्ट्रपति को एक राजनीतिक समिति का अध्यक्ष बनाया जाना कितना सही है? क्या यह सरकार की मनमर्जी है? इस मसले पर अपनी बात को रिकॉर्ड करें और बताएं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। आपकी बात भले मसले के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, अपनी बात पक्ष और विपक्ष में जरूर रिकॉर्ड करें अपने फ़ोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर, क्योंकि हर मुद्दे पर आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा। नमस्कार।